तो पुरुष आठ से आवृत्ति करेंगे, आठ पृष्ठ से 29 श्लोक से 43 तक खूब प्रेम से जुड़िएगा। ये भागवत का श्लोक है। विष्णु समान पदास्यम तम, विष्णु समान पदास्यम तम उष्णा असुरेश्वरम जानम चिकित्सितम विष्णु शिष्यं प्राह विदांबर शुक्र उवाच एष वैरोचने साक्षात् भगवान् विष्णुरव्ययः कश्यपाद अदितेर्जातो देवानां कार्यसाधकः प्रतिश्रुतम् तस्मै जगन्नाथमजानता न साधु मन्ये दैत्यानाम् महान् उपगतो मयः एषते स्थानमयि स्वर्गम् श्रियम् तेजो दशः श्रुतम् ठीक है, सुधार लीजिए। इसमें तो आठ को तुभि क्रमाग्नान लोकम विश्वकाय क्रमिष्यति सर्वस्वं विष्णवे दत्त्वा मूढ़ वर्तिष्यसे कथम। क्रमतो गाम पदैकेन द्वितीयेन दिवं विभो खञ्चकायेन महता तार्तीयस्य कृतो गतिः निष्ठान्ते मर्क्ये मन्ये व्यप्रदातुः प्रतिश्रुतम् प्रतिश्रुतस्य योनिसः प्रतिपादयितुम् भवान् न तद्दानम् प्रशंसन्ति येन वृत्तिर्विपद्यते दानम् यज्ञः तपः कर्म लोके वृत्तिमतो यतः धर्माय दशचरिताय कर्माय स्वजनाय च पञ्चधरापि वजन वित्तम् इहा मुक्ता च मोदते अत्रापि बहवे च गीतम् स्वयं मे असुरोत्तम स्वयं मे सुरसत्तम सत्यमो मेति प्रोक्तम् सत्यम् ओमिति जप्तोक्तम् जन्मित्यहामृतम् हितः सत्यम् पुष्पफलम् विद्या आत्मवृक्षस्य दीयते वृक्षे जीवति तन्न स्याद् अमृतम मूलम आत्मनु तब जथा वृक्ष उन्मूल उद्वर्तते चिरात एवं नष्टानृत सद्य आत्मा सुचेन संचय पराग विक्तम अपूर्णम वा अक्षरम जत पदम जतकी उचितोमति ब्रूया तेन विच्छेतमान विच्छय सर्वम कुर्वन् नालं कामेन चात्मने अथेतत् पूर्णमध्यात्मम् यच्च नित्यानृतम् वचः सर्वम् नित्यनृतम् ब्रूयात् स दुष्कृतिः स्वसंवृतः स्त्रिशूर्णविवाहेश वित्तर्थे प्राणसंकटे गोब्राह्मणार्थे हिंसायाम् नृतम सैद दुगुप्सित पढ़िए धरिए मत सुष्यति उद्वर्तते चिरा सुष्यति के बाद संधि है एवं नष्टानुत शब्द आत्मा शिष्य न संशय विश्वे क्षमा प्रदाशित उष्णा अश्लेषण जानम चिकित्सित विष्णु शिष्य बाहिदान जब बलि महाराज भगवान को पृथ्वी दान देने के लिए तैयार हुए क्षमा प्रदास क्षमा मैंने पृथ्वी पृथ्वी दान करने के लिए जब तैयार हुए तीन पर्व भूमि तब पास में ही बैठे थे गुरु महाराज और भगवान भी बहुत बड़े आसन पर बैठे थे ब्रह्मचारी के रूप में ब्राह्मण के रूप में दान देते समय वे अपने शिष्य से बोले बलि महाराज ये भगवान की इच्छा को समझते थे उनका नाम उष्णा है शुक्राचार्य का नाम गीता में भगवान ने कहा है कवि नाम उष्णा कवि मैं विद्वानों में शुक्राचार्य हूं जिनका नाम गीता में आया है भगवान जिनको प्रमाणित कर रहे ऐसा विद्वान बोलने जा रहे हैं बलि महाराज को दान देने से रोकने वाले हैं रोकना चाहते थे पर बोल रहे थे भगवान की इच्छा को जान करके भगवान के सामने कोई छिपा करके नहीं भगवान बैठे हैं बगल में गुरु महाराज बैठे हैं शुक्राचार्य और बोल रहे हैं दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए ऐसे परम विद्वान जो वेदों के प्रकांड विद्वान हैं वेदों में एक अंश है आयुर्वेद मेडिकल साइंस इसमें वे इतने प्रवीण हैं कि अभी आप सुने कि वे बलि महाराज को जीवित करके बलि महाराज मर चुके थे तो मरे हुए को हुए जिलाते हैं केवल बीमार को नहीं मरे हुए को जिला सकते शुक्राचार्य ऐसे विद्वान इनके द्वारा कही हुई नीति भगवान कृष्ण ने अनेक बार उद्धृत किया है महाभारत में तो ऐसे परम विद्वान बोल रहे हैं भगवान के सामने बोल रहे हैं तो बहुत महत्वपूर्ण प्रवचन है। भगवान की इच्छा को जानते थे, भगवान बलि पर कृपा करना चाहते हैं, इनका धन ले करके भगवान अपने निष्ठावान भक्तों पर ऐसी कृपा करते हैं। जो पक्का भक्त हैं, जिनकी भक्ति कभी टूट नहीं सकती है, ऐसे महान भक्तों पर धन छीन करके कृपा करते हैं। जब भगवान देख लेते हैं कि इस भक्त का धन अनिष्ट करेगा, तो उसके धन को छीन लेते हैं। ऐसे ही बलि महाराज तो परम भक्त थे, परंतु धन में उनकी तृष्णा थी, ये धन रखना चाहते थे और अभिमान में भी हो गए थे। परिवार के प्रति ममता थी, भगवान ने इसीलिए उनके परिवार की बड़ाई किया कि आपके कुल में सबदानी हुए, बड़े बड़े वीर हुए। इसको सुन करके बलि महाराज को आनंद आ रहा था और भगवान के सामने वे कह दिए कि आप तीन पद भूमि मांग रहे हो तो तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल बचकानी है, तुम बच्चा उम्र से भी हो और बुद्धि में भी बच्चा हो। भगवान से ऐसे बोल दिए, तुम बच्चा हो, तुमको अपने व्यवहार का कोई ज्ञान नहीं है, तुमको अवसर देता हूं, तुम इच्छा के अनुसार मांगो, बहुत मैं द्वीप दे सकता हूं, सारी पृथ्वी दे सकता हूं, तुम उसे मांगो। तुम किससे मांग रहे हो जानते हो, मैं त्रिलोकेश्वर हूं, तीनों लोकों का ईश्वर हूं और तुम एक ब्राह्मण हो, अतः मेरी इच्छा को पूरा करो, तुम और मांगो। लेकिन भगवान वही बात कहे कि अब हमको केवल तीन पद भूमि चाहिए, और का लालच नहीं। तब इस बात को सुन करके गुरु महाराज बोलते हैं, भगवान के बिल्कुल सामने बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि छिपा करके बलि को कुछ कहें, भगवान सुन रहे हैं और कहते हैं, ऐसा वैरो चने साक्षात भगवान विश्व का बोले, ऐसा माने ये जो बैठे हुए हैं ये कौन है जानते हो, संबोधन करते हैं, वैरो चने हे विरोचन पुत्र, तुम विरोचन के पुत्र हो, विरोचन प्रहलाद महाराज के पुत्र थे, तो इनको संबोधन कर रहे हैं वैरोचन। वैरोचन है मतलब हे विरोचन के पुत्र बलि, हे विरोचन पुत्र, ऐसा ये जो तुम्हारे सामने बैठे हैं ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये साक्षात भगवान, प्रत्यक्ष भगवान आंखों के सामने बैठे हैं, ये विष्णु है। बलि महाराज माने चकित हुए, कहे कि विष्णु भगवान तो चार भुजा के हैं, सांवले हैं, और ये तो ब्राह्मण है। तो शुक्राचार्य कहते हैं, नहीं तुम नहीं पहचानते हो, ये साक्षात विष्णु, साक्षात भगवान विष्णु है सर्वव्यापक, और ये अविनाशी है, अव्यय है, कश्यपाद अद्वितीय जात, ये कश्यप मुनि के यहां माता अदिति से जन्म लिए है, अदिति के गर्भ से, इसलिए देवानाम कार्य साधक, देवताओं का काम साधने के लिए। देवताओं का काम क्या है मानव जिज्ञासा करें बलि महाराज तो कहते हैं, उसके पहले शुक्राचार्य कहते, तुमने दान देने की जो प्रतिश्रुति दे दिया तो बड़ा गड़बड़ किया, अनर्थ किया, प्रतिश्रुतों तस्मय तस्मय इनको जो तुमने दान देने की प्रतिज्ञा कर लिया, प्रतिश्रुतम वचन दे दिया, तो तुम अनर्थ को नहीं जानते हो, इससे क्या क्षति हो जाएगी इसको नहीं जानते। मैं तो दैत्यों के लिए इसको अच्छा नहीं मानता हूं, बहुत बड़ा अन्याय होने जा रहा है। अनय नय का होता है नीति, अनीति होने जा रही है। तो बलि महाराज चकित होकर पूछे, गुरु महाराज ये कौन सी अनीति है? अगर भगवान है तो ये ब्राह्मण बनकर के आए हैं, इसमें क्या अनीति है? तो वे कहते ये सब ते स्थान मय स्वर्गम श्रियम तेजो जस सुतम ये उंगली से दिखाकर कह रहे भगवान को, ये ते स्थानम ऐश्वर्गम ये तुम्हारे घर द्वार सबको और संपत्ति को ऐश्वर्य को, तुम्हारा जो इतना बड़ा पावर है सबको, जस श्रुतम तुम्हारे तेज को प्रभाव को और तुम्हारी कीर्ति को, श्रुतम तुम्हारे ज्ञान को जो तुम इतनी बड़ी पढ़ाई किए हो और पढ़ाई करके इतना बड़ा पद पाए हो, ये सब छीन लेंगे दान के बहाने, आच्छुद्य छीन करके और तुम्हारे शत्रु इंद्र को दे देंगे, शक्र को दे देंगे, तुम्हारी सब सारी संपत्ति को, तुम्हारे मान को, प्रतिष्ठा को, तुम्हारे ज्ञान को हर लेंगे और इंद्र को दे देंगे, उसी इंद्र को जो इंद्र ने तुम्हारा वध किया था। तो बलि महाराज राम गुरु महाराज तो केवल तीन पर भूमि मांग रहे हैं। तो कहते हैं शुक्राचार्य, अरे मूर्ख त्रिभी क्रमाय रिमान लोक, तीन पग में ये इमान लोक सारे लोगों को नाप लेंगे, विश्व काय विश्व रूप धारण करके सारे विश्व को अपने शरीर में दिखा देंगे और इस तरह से नापेंगे कमी शक्ति। सर्व सोम विष्णवे दत्वा ये सब कुछ ले लेंगे, तो तुम सब कुछ विष्णु को दे करके फिर कैसे जियोगे, तुम्हारी जीविका क्या रहेगी? श्री प्रभुपाद कहते हैं कि ये शुक्राचार्य पुरोहित थे बलि महाराज के, गुरु थे, पुरोहित को चिंता होती ही है कि यजमान का धन बना रहे, नहीं तो हम लोग कहां जाएंगे, पुरोहित का परिवार कहां जाएगा, ये बोल रहे हैं। सर्वस्वम विष्णवे दत्ता मूढ़ प्रतिशत कथन, अरे मूर्ख अरे मूढ़ दान देने चले हो तो सब कुछ विष्णु को दे करके कैसे वर्ती से कैसे जियोगे, तुम्हारा काम कैसे चलेगा, कथम वर्ती से कैसे जियोगे, तुम्हारी जीविका क्या रहेगी? ये कैसे तीन पग में सारा विश्व नाप लेंगे तभी बताते हैं। क्रमतो गाम पदाई के लिए क्रमतः जब विष्णु नापेंगे पृथ्वी को, तो नापते समय पदा एक एक पैर से पृथ्वी को पूरा नाप लेंगे, पृथ्वी से तात्पर्य है नीचे के सारे लोगों को एक पग से, जैसे पृथ्वी के नीचे इस धरातल के नीचे अतल है, अतल बीतल सुतल महातल और सातल आदि सबसे नीचे पाताल है। इस सारे नीचे के लोगों को एक पल से नाते हैं और दूसरा द्वितीय न दिवम और दूसरे पैर से ये ऊपर बनाए तो दिवम स्वर्ग लोग महालोक जन लोग तत्लोक यहां तक कि सत्य लोग नाते हैं। सत्य लोक में तीन धाम है, भगवान ब्रह्मा जी का धाम, भगवान शिव का धाम और सबसे ऊपर है वैकुंठ धाम। तो ये सब नापे हैं। तो तृतीय के लिए तुम्हारे पास कोई जमीन ही नहीं बचेगी। तृतीय पैर कहां रखेंगे, तुम्हारे पास क्या है तीसरे के, कुछ नहीं। दान देने चले हो तो अपनी औकात को देख लो, तुम्हारे पास धन है कि नहीं। दो पग में ही सब नाप लेंगे, तारतीय से कुतो गति, तीसरा पैर रखने के लिए तुम्हारे पास क्या चीज है, क्या स्थान। तारतीय से कुतो गति, तृतीय के लिए तीसरे पैर के लिए क्या स्थान है। निष्ठा ते नरके मन, निष्ठा तुम्हारी स्थिति मैं नरक समझ रहा हूं, तुम नरक में गिरोगे। क्यों नरक में गिरोगे, क्योंकि ये नीति बता रहे हैं प्रतिष्ठा से यो निशा, तुम अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वचन दान के अनुसार पूरा नहीं कर पाओगे, अपना वचन पूरा नहीं कर पाओगे, तो इसीलिए पूरा करने में असमर्थ हो, तुम तीन पर भूमि दान नहीं कर सकते, पूर्ति पा गई तुम पूरा नहीं कर पाओगे, इसलिए तुमको नरक में जाना है। जो व्यक्ति वचन दे करके अपना वचन पूरा नहीं करता है तो नरक में गिरता है, तो तुम नरक में गिरोगे।
हरे कृष्ण
निष्ठां ते नरके मन्ने, मैं तो ऐसा मान रहा हूं कि अब तुम नरक में गिरोगे, क्योंकि प्रतिष्ठितम अदात प्रतिश्रुतम, प्रतिश्रुति को दिए हुए वचन को पूरा नहीं करोगे, ये नियम है कि जो अपने वचन को पूरा नहीं कर पाता है वो नरक में गिरता है, तो तुम नरक में गिरोगे। न तब दानम प्रशंसंती जिन वित्ते विपद होते, विद्वान लोग उस दान की प्रशंसा नहीं करते हैं जो दान देने से अपनी आजीविका ही खत्म हो जाए, अपनी वृत्ति विपद में पड़ जाए तो उस दान की प्रशंसा नहीं करते। तुमने दान देने का जो वचन दिया तुम्हारी मूर्खता है, इसी दान के कारण तुम नरक में गिरोगे। न तब दानम प्रशंसन्ति जैन वृत्ति विपद देते, जिससे अपनी आजीविका ही संकट में पड़ गए उस दान की प्रशंसा नहीं करते हैं विद्वान। यज्ञ तप यज्ञ दान तप और सकाम कर्म उसके लिए है जिसके पास जीने खाने के लिए काफी है। अपने लिए जब आजीविका नहीं रहेगी तो क्या दान करोगे? मान लो आज एक ब्राह्मण आया है, तुम सब दे दोगे तो दूसरा कोई ब्राह्मण आएगा तब क्या करोगे? तुम्हारे पास कुछ रहे नहीं रहेगा, तो सीधे सौरी कहोगे ना। तो इस दान की प्रशंसा लोग नहीं करते हैं। दान करना चाहिए लेकिन और आगे देने के लिए रखना चाहिए। और दान देना है कि नहीं आगे भी, तो दान वही करेगा, जप वही करेगा, तप वही करेगा, सकाम कर्म वही कर सकता है जिसकी आजीविका बनी हुई है। अपने खाने की पीने के रहने की व्यवस्था है तो उसी के लिए शोभा की बात करनी है। दानम यज्ञ तप कर्म लोके वृत्ति मतल करता है। दान यज्ञ तप कर्म ये सब उसके लिए है जिसकी आजीविका ठीक ठाक है, वृत्ति मतल जिसकी वृत्ति ठीक से चल रही है, उस दान की प्रशंसा नहीं करते हैं बुद्धिमान। दान दे करके और बस रोड पर घूम जाए। देखो वेद कहता है धन को, संचित धन को पांच भाग में बांट करके भोगना चाहिए। धर्माय जससे अर्थाय, कुछ रुपया रखना चाहिए धर्माय धर्म के लिए। धर्म का अर्थ है परलोक के लिए, इस जन्म के बाद भी जन्म होगा ना तो अच्छे जगह पर हम जाएं, स्वर्ग में जाएं या भगवान के धाम जाएं, इसके लिए कुछ कर्म करना होता है जिसको धर्म करते हैं। तो जाना तो निश्चित है, यह जीवन तो 2-4 साल के लिए है, बहुत क्षणिक जीवन है। अंततः इस शरीर को छोड़ करके और परिवार को छोड़ करके अपने धन को छोड़ करके जाना है, तो कुछ धन आगे के जीवन के लिए खर्च करना चाहिए। धर्माय धर्म के लिए, धर्म का इनाम समझना चाहिए कुछ अगले जीवन के लिए। जैसे हम लोग धन कमाते हैं तो 1 साल के बाद खर्च करने की योजना रखते हैं, या दूसरे दिन कल के लिए, परसों के लिए, आगे के लिए रखते हैं। ऐसा तो नहीं है कि सारा धन आज ही खत्म कर दें, तो कुछ धन धर्म के लिए रखना चाहिए। इसके विषय में श्री रूप गोस्वामी ने आदर्श उपस्थित किया है। रूप गोस्वामी जब रिटायर हुए सरकार की नौकरी से, नवाब हुसैन शाह के यहां वे बहुत बड़े मंत्री थे, जब रिटायर हुए तो उनको सोने की मुहर मिली बहुत ज्यादा, 1 नाव सोने की मुहर मिली। नौका में भर करके गंगा जी से धन ले गए, ले गए तो आधा धन 50% ब्राह्मणों को दे दिए, भक्तों को दे दिए, और 25% 100 में 25 अपने लिए रखे और 25% अपने परिवार को दे दिए। जो अपने लिए रखे उसी 25% में वे सनातन गोस्वामी को जेल से छुड़ाए थे। श्रील प्रभुपाद इसके ऊपर लिखते हैं, कृष्ण भावना में विकास करने के लिए धन खर्च करना चाहिए। यही है धर्म आयन, धर्म के लिए। धर्म है भगवान की भक्ति को बढ़ाना। भगवान की भक्ति को बढ़ाने में उन भक्तों की मदद करनी चाहिए जो भक्ति के प्रसार में लगे हुए हैं। इस समय स्पष्ट है, बहुत स्पष्ट, कि इस धन संचित धन का 25% या 50% देना चाहिए भगवद गीता एज इट इज के प्रचार के लिए। यह वेद में लिखा हुआ लिखित लिपि है, जो वेद का सबसे बड़ा विद्वान बोल रहा है। धर्माया जससे, कुछ धन धर्म के लिए, कुछ जस के लिए। कीर्ति के लिए समाज के कार्य में खर्च करना चाहिए। जैसे व्यक्ति की कीर्ति रहती है, पेड़ लगा देना और पानशाला की व्यवस्था करना, पानी पीने की, खाने के लिए गरीबों को, इससे कीर्ति होती है कि यह व्यक्ति इतना उदार है। कीर्ति जिसकी है वही जीवित है, जिसकी कीर्ति नहीं है वो मरा हुआ है। तो कुछ काम जरूर करना चाहिए जिससे कीर्ति रहे, जस रहे। धर्माय जस से अर्थाय, और कुछ अर्थ के लिए, आगे पैसा कमाने के लिए पैसा रखना जरूरी है। पैसा पैसे को कमाता है, पैसा नहीं रहेगा तो क्या काम करेंगे, कमा नहीं सकेंगे, कोई दुकान नहीं खोल सकते या और कोई कार्य नहीं कर सकते जिससे कि और हमें पैसा मिले। जीवन में पैसा रखना जरूरी है और पैसा कमाना भी जरूरी है, आगे हमेशा आता रहे आए, इसकी कोशिश करनी चाहिए। किसी व्यक्ति को इसके भरोसे नहीं रहना चाहिए कि हमारे पास बहुत पैसा है। हिमालय जैसी राशि भी खर्च होते देर नहीं लगती है। अतः काम जरूर करना चाहिए जिससे प्रतिदिन कुछ न कुछ आमदनी हो। स्वजनाय कामाय स्वजनाय, और कुछ इंद्रिय तृप्ति के लिए, खाने के लिए, घर मकान बनाने के लिए, वेद के लिए, सोने के लिए प्रबंध रखना चाहिए। स्वजनाय, और कुछ स्वजनों के लिए, जैसा रूप गोस्वामी ने दिखाया आदर्श। स्वजन मतलब अपने माता पिता, अपनी पत्नी, पुत्र, इमीडिएट स्वजन है, स्वजनों के लिए रखना चाहिए। सब धन अपने सुख के लिए उड़ा नहीं देना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। धर्माय जस्य अर्थाय कामाय स्वजनाय, तो इस तरह से धन को 5 भाग में बांटकर पंचधा विभजन, विभजन 5 भाग में धन को बांट करके तब जीना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति इस जीवन में भी यह अमूत्र चार और परलोक में भी सुखी रहेगा। भगवान के सामने प्रवचन हो रहा है, शुक्राचार्य गलत नहीं बोलेंगे। भगवान के सामने बोल रहे हैं और भगवान की ही बात बोल रहे हैं। धन को इस तरह से 5 हिस्से में बांट करके और भोगना चाहिए। पंचधा विभजन, तो वो व्यक्ति यहाँ इस लोक में और अमूर्त दूसरे जन्म में मोदते सुखी रहते हैं। अत्रापि बहुचे गीतम शून में असुर सप्तम, हे असुर श्रेष्ठ, इस विषय में भी वेद के बहुत से श्लोकों में कुछ कहा गया है, मुझसे सुनो, सुनो बहुत ध्यान से, मेरे द्वारा सुनो, मैं बोल रहा हूं। बहुविचय वेद की दिशाओं में ये आया हुआ है बहुत से श्लोकों में। वेद का प्रवचन हो रहा है, अत्रापि बहुविचय, इस विषय में भी वेद के श्लोकों में कहा गया है, कई श्लोकों में, शुरु में मुझसे सुनो असुर सप्तम, ये असुर शिरोमणि तुम सुनो, सत्यमोमिति जत्वतम, सत्यमोमिति जत्वतम, यह ओम शब्द जिस वचन में लगा हुआ है तो यही सत्य है। सत्य का अर्थ है कि यदि कोई किसी के लिए कहे ठीक है मैं आपको दूंगा, आपकी जरूरत को पूरा करूंगा, इस तरह से बोलना यह सत्य है। सत्यम ओम इति जप प्रोक्तम, जो ओम शब्द है, ओंकार से होता है ठीक है मैं दूंगा, स्वीकारात्मक शब्द, और असत्य न इति नित्यलुप्तम, नहीं मेरे पास नहीं है मैं आपको नहीं दूंगा, तो यह कहना है ये असत्य है, यही असत्य अमृत है। हाँ दूंगा स्वीकार करना ये सत्य है, और नहीं मेरे पास नहीं है मैं नहीं दे पाऊंगा ये कहना असत्य है। तो सत्यम पुष्प फलम विज्ञा आत्मवेक्ष जी गीयते, इसी शरीर से हम कुछ भी कमा सकते हैं। तो वेद कहता है सत्य इस आत्मवृक्ष का, शरीर वृक्ष का फल पुष्प है, फल है पुष्प है, कुल फल है, और जब तक शरीर है तो शरीर रहते ही हम कुछ दे पाएंगे किसी को, या सत्य बोलेंगे हाँ करेंगे या न करेंगे, जब तक शरीर है तभी तक। तो सत्य को इस शरीर वृक्ष का फल कहा गया है, फूल कहा गया है, आत्मवृक्ष से गीयते, और गीयते ऐसा गाया गया है वेद में, पर बताया गया है कि शरीर रूपी वृक्ष का फल है सत्य। जबकि शरीर स्वयं झूठा है, अनित्य है, शंकराचार्य जी ने कहा है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तो यह शरीर अमित है अतः झूठा है, पर इस झूठे शरीर से ही सत्य को कमा सकते हैं। शरीर कहेगा नहीं, ये रोज रोज छीन हो रहा है और एक दिन पूरा समाप्त हो रहा है। तो शरीर के रहते रहते नित्य को कमाना है इस अनित्य शरीर से। ये शरीर रहेगा नहीं, ये क्षणभंगुर है, लेकिन इसी शरीर से हम परम सत्य को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को पा सकते हैं। यह बात गाई गई बड़े बड़े मुनियों ने कहा है वैदिक ग्रंथों में। तो वृक्षे अजीवति तन्मस्य मृतम नहीं बनाते, वृक्ष यदि जीवित नहीं रहेगा, तो शरीर यदि नहीं रहेगा तो कुछ नहीं हो सकता है, न दान धर्म हो सकता है, कोई शुभ कर्म नहीं होगा। क्योंकि अमृतम मूलम आत्मा, शरीर का मूल है असत्य। ये टीका हुआ है किसी तरह से, लेकिन इसका मूल है असत्य। असत्य अमृतम मूलम आत्मा, शरीर झूठा है, झूठे पर टीका हुआ है। तो जैसे वृक्ष की जड़ उखड़ जाने पर वो शुष्क होती है, तब जथा वृक्ष उन्मूलन, वृक्ष की जड़ उखड़ जाए तो उन्मूलन, और वो मूल से उखड़ जाता है तो शुष्क सूख जाता है और उद्वार करते और गिर पड़ता है। तो शरीर एक वृक्ष की तरह है, ये असत्य है। तो एक दिन यह गिर जाएगा, सूख जाएगा। तो जैसे वृक्ष की जड़ उखड़ जाने पर वो सूख जाता है, गिर जाता है, इस शरीर का मूल है असत्य, झूठ बोलना। नीति सिखा रहे हैं। जिस व्यक्ति का असत्य उखड़ गया है, सत्य उखड़ गया है, तो यह असत्य नष्ट हो गया है। जो व्यक्ति सब समय साथ बोलेगा, कोई भी आवे कहे कि हमको ये चीज चाहिए, वो कह दे कि ठीक है, आपको जितना चाहिए और जो चाहिए मैं दूंगा, तो वह तत्काल ही नष्ट हो जाएगा। अगर साथ बोलने लगे तो वो नष्ट हो जाएगा। एवं नष्टा मृतम शब्द आत्मा शिष्य में संख्य। इस प्रकार से जिसका झूठ खत्म हो गया है, केवल सत्य बोल रहा है, सबको देने की प्रतिज्ञा करता है कुछ भी, तो सद्य वो तुरंत नष्ट हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए तुम वेद के अनुसार बोलो। अब इसी में बुद्धिमानी है कि तुम अपने वचन को वापस लो, और वचन को अगर लौटाओगे तो नरक में जाओगे, लेकिन नरक में गिर कर भी कुछ धन बचा लो। यही कहने का गुरु जी का, नरक में तो जाना ही है कि क्योंकि तुम किसी हालत में पूरा नहीं कर पाओगे। तो ये कोई तर्क अच्छा नहीं है। मान लीजिए बड़े महाराज ने प्रतिज्ञा कर लिया कि मैं 300 रुपया दूंगा इस ब्राह्मण को, और किसी कारण से 100 नहीं दे पाए तो 200 भी न दे, 200 तो दे जितना दे सकते हैं दे, और जितना नहीं दे पाएंगे तो चाहे नरक में गिरी चाहे कुछ भी हो, पर गुरु जी कह रहे हैं नरक में भी गिरो लेकिन कुछ बचा करके गिरो। एक नीति है और वैदिक नीति है। आगे कह रहे हैं पराग रिक्तम अपूर्णम अक्षरम जप तो दो नीति। ओम ठीक है मैं दूंगा यह कहना ये धन को पराग दूर कर देता है। आदमी को रिक्तम खाली कर देता है और यह अपूर्ण है उससे पूरा नहीं रह सकता आदमी। अगर देना चालू करे हमेशा देता ही रहे जो भी आए उसको तो खाली हो जाएगा उसका धन लुटने वाले और मांगने वाले बहुत आ जाएंगे। इसीलिए यह ओम शब्द मैं दूंगा यह कहना व्यक्ति को खाली कर देता है अपूर्ण कर देता है पराग धन को दूर कर देता है। जब किंचे दो मिति ब्रिया जिस किसी को भी कोई भी चीज देने की कोई कहे प्रतिज्ञा करे कि मैं दूंगा यदि बोले तो तेन रुचेत वैपमान उससे खाली हो जाएगा उसके पास कुछ भी नहीं रहता है। और खास करके भिक्षुक के भिक्षमंगे को कह दे कि ठीक है आपको जो चाहिए हमसे मांगिए तो उसकी इच्छा को पूरी नहीं कर पाएगा। ये देखा गया है सरकार कोशिश करती है कि निर्धनों के लिए घर बनाया जाए उनको घर बना करके दिया जाए लेकिन ऐसा होता है सरकार घर बनाती है। और देखा है हमने कई जगह जैसे नंदगांव में घर बनाया गया है खाली पड़ा हुआ है तो लोग उन घरों में रहते नहीं है वृंदावन में भी ऐसा है। घर को बेच देते हैं दूसरे के और स्वयं रोड पर रहते हैं। तो भिक्षु को कुछ भी दे करके उनके मन को पूरा नहीं किया जा सकता। अलम नलम न अलम तब तब तो न कहना ही सबसे अच्छा है ना। यदि ये कहा जाए तब गुरु जी कहते हैं सर्वम न इत्यर्थम ब्रिय सब दुष्कृति शिशु में जो सबको सभी के लिए यही कहता है क्या करूं मेरे पास नहीं है यही बोलता है तो मरा हुआ है सांस भर चल रही है वो मरा हुआ है। कभी मान लीजिए अपना पुत्र मांगे कुछ कि हमें फीस देना है स्कूल में जाना है तो कह दे कि नहीं एक पैसा भी नहीं और इसलिए मांगे हमको कपड़ा चाहिए या कुछ चाहिए तो कह दे कि बाप की हमारे पास कुछ नहीं है। और सबसे यही झूठ बोले न करे सरकार से भी न कर दे और किसी से भी और इस काम में भक्तों से भी कह दे क्या करे हमारे पास इस समय आमदनी नहीं है नहीं तो मैं आपके कहने से सौ बीता तो जरूर लेंगे। यदि इस तरह से झूठ बोले कि हमारे पास कोई शक्ति नहीं है तो वो व्यक्ति सांस लेता हुआ भी मरा हुआ है श्वसन मृत सांस चल रही है लेकिन वो मरा हुआ है सभी परिस्थितियों में और सबसे यदि कोई बोले कि नहीं हमारे पास नहीं है तो सब दुष्कृति उसकी कीर्ति खराब होती है और वह जी रहा है लेकिन मरा हुआ है, सांस लेता हुआ भी मरा हुआ है, श्वसन लेता है। तो यह कहना कि हाँ ठीक है मेरे पास है मैं दूंगा, ये तो सत्य है और उससे कीर्ति बढ़ती है, लेकिन न कह देने से भी उसकी उसके धन की रक्षा होती है। यदि हमेशा हाँ कोई कहे तब तो सब जगह के भिक्षुक जुट करके मानेंगे, और सुन ले कि ये बहुत दान दाता है, देता ही रहता है, तब कौन नहीं मांगेगा, सभी आकर के मांगेंगे और वो कितना दे पाएगा। परंतु न कहना तो ये मरण है, इसलिए कभी कभी दे और समय पर न दे, यही नीति है देव की। तब श्री सुखदेव को सन करते बलि रेवम बृहपति शिलाचार्य ने भाषित तुस्मिन भूत्वा क्षण दादन वाचा वहतो गुरु। बलि महाराज ध्यान से सुने गुरु महाराज की बात को, गुरु जी बोल रहे थे वेद के श्लोकों से कैसे दान करना चाहिए, किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, ये सब बता रहे थे। तो वहां पर प्रत्यक्ष भगवान को नहीं देना है, ब्राह्मण को नहीं देना बोल रहे थे, क्योंकि ये विष्णु हैं, ब्रह्मचारी के रूप में आए हैं, ये कपट किए हैं, कपट करके ब्राह्मण बन कर आए हैं, माया मार को हरि अपनी माया से रोग माया से ब्रह्मचारी बने हुए हैं, हमारा सब हर लेंगे। तो बलि महाराज इसको सुने, गुरु बोल रहे हैं और ऐसे गुरु जिन्होंने जीवन दान दिया बलि महाराज वो मर गए थे युद्ध में, तो इसी गुरु ने उनको जीवन दान दिया और ऐसे गुरु बोल रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिए। जो जीवन दान दिए हैं, यज्ञ में सफलता दिए, स्वर्ग विजय दिए, ऐसे गुरु बोल रहे हैं, और गुरु के अंदर शिष्य की हित की कामना थी, कोई वैर विरोध नहीं थी, प्रेम से बोल रहे थे। तो इसीलिए बलि महाराज तुष्णिम भूतवा क्षण कुछ देर तक चुप जाते रहे, बोले नहीं, बड़े ध्यान से सुने। ये कुलपति हैं और गुरु जी कुलाचार्य हैं, कुल के आचार्य, वंश परंपरा से गुरु हैं। ये विरोचन के भी गुरु रहे, उससे पहले प्रहलाद के भी गुरु हैं, हिरण्यकश्यपु के गुरु रहे, हिरण्याक्ष के, सभी असुरों के गुरु रहे। तो स्वाभाविक हित चाहते हैं, तो ऐसे गुरु की बात पर ध्यान देना जरूरी है, एकाएक कैसे कह दें कि नहीं मानते, इसीलिए कुछ देर चुप रहे, विचार करने लगे क्या करना चाहिए। गुरु जी बोल रहे हैं, तो विचार करके फिर उन्होंने बोलना चालू किया। शुक्राचार्य की बातों को काटने काटते हुए बहुत सुंदर उक्ति है, आज जो सुन रहे थे इससे बहुत उत्कृष्ट होती है। कल बोलेंगे बलि महाराज, तो उसको प्रस्तुत किया गया कल जय श्री प्रभुपाद। बलि महाराज जी की युक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण है इससे। मैं आज बंद कर रहा हूं इसीलिए कि उस उक्ति में से कुछ कहना ठीक नहीं है, उसको काफी टाइम चाहिए व्यक्त करने के लिए। श्री वामन देव की जय, श्री बलि महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय। Thank you.